यानी एक फासिद फल जो होता है वो अंदर से तो गंदा होता है लेकिन बाहर से नजर नहीं आ रहा था कि वो गंदा है, जबकि फासिक वो है कि जिसकी गंदगी या जिसकी गलाजत है वो जाहिर हो जाती है उसके अपने मुंह से, अपने रवैयों से वो अपनी गंदगी का इजहार करता है।
अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जी उमर भाई, जजाक अल्लाह खैर, आपने बड़े अच्छे तरीके से इन दो आयात को ट्रेन किए और अल्हम्दुलिल्लाह काफी एस्पेक्ट्स को आपने इसमें डिटेल में डिस्कस कर लिए। इसमें एक चीज जो इन दो आयात के हवाले से आ रही थी कि अल्लाह ताला ने इन ये जो इसकी बात की है कि अल्लाह ताला इस मिसाल देने से शर्माता नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ऊपर जो बात की है वो ईमान वालों को बशारत दे रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि उनको जो है वो रिस्क दिया जाएगा, वो रिस्क देंगे तो वो कहेंगे हमने जैसा का पहले भी खाया हुआ, एक ऐसी एग्जाम्पल दी जा रही है ना। तो जो जो आप एटीट्यूड बात कर रहे थे, तो जो इसको सुने का जो अहले ईमान वाला है वो तो उसको उस पर उसको यकीन रखता है, वो तो उसको इमेजिन कर रहा है कि मैं वहां पर हूंगा और मेरे साथ ऐसे होगा, उसका एटीट्यूड उस आयत को परसीव करने का उसका नजरिया ही मुख्तलिफ है। और जो जो काफिर है या जो जो जिसके दिल में निफाक है उसको तो लग रहा है कि क्या मिसाल है, मतलब ये कोई बड़ी आला मिसाल तो नहीं दी अल्लाह ताला ने, वो अपने नेगेटिव एटीट्यूड से उस चीज को डाउन प्ले कर रहा है कि ये क्या बात है जी, फल मिल गया, उसका फल मिल गया, उसका जो जहन है उसमें ही मतलब वो फसाद है कि वो चीज को ऑपरेट ही नेगेटिव वे से कर रहा है, वो पॉजिटिवली देखने के लिए कि अल्लाह ताला जो बात कर रहा है उसके बात जो है वो बात हो क्या रही है, वो अपने आप को उसमें नहीं कह रहा, कह रहा कि वो उस एग्जाम्पल का एक पार्ट पकड़ेगा और उसको कहेगा कि एग्जाम्पल मुझे पसंद नहीं आई। तो ये एक बिल्कुल दुरुस्त बात की, एक एटीट्यूड होता है आगे भी वो जो इस तरह है ना कि माजा अरादल्लाह बिहाज़ा मसाला, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि भाई आगे गल करती है, मतलब ये बात तो मतलब कोई बड़ी ऊपर की बात नहीं थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये अल्लाह ताला को शर्म नहीं आती कि तुम लोग, मतलब अल्लाह ताला से शर्मिंदा नहीं है, अल्लाह ताला हया नहीं इस चीज़ की कि अल्लाह ताला क्या मिसाल दें। जो और जो ईमान वाले हैं उनके लिए वो मिसाल, उनका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है, वो कहते हैं कि अन्ना उल हक मिन रब्बीन, कि मेरे रब इधर से हक है, वो जानते हैं इस चीज को, उनके लिए वो चीज प्रॉब्लम नहीं होती। यही चीजें मैंने अक्सर जो जो लोग थोड़े मुलहदीन हो जाते हैं या जो इस्लाम में किनारे किनारे पे चलते हैं तो वो उनकी तरफ से अक्सर मैंने इतराज ये देखा है कि वो कहते हैं जी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खाने पीने की एग्जाम्पल्स दे दी और ये अज़वाज मुतहरात एग्जाम्पल दे दी, हम इसलिए नेकियां करें। आप अक्सर आपने देखा होगा ये दीज आर द एग्जाम्पल जो अहले ईमान के ईमान को बढ़ाते हैं कि अल्लाह ताला हमसे वादा कर रहा है, वो उन्हें पता है कि जन्नत इससे बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये चंद एग्जाम्पल दी है ताकि जनरल पब्लिक को समझ आ जाए कि जन्नत जो है वो चीज क्या है, वो उसकी उस कंक्रीट डेफिनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा उनको परेशानी नहीं होती, लेकिन उनको होता है कि जनाब ये बात की जा रही है हमें, व्हाट द गॉड इज ट्राइंग टू सेल अस। तो ये चीज जो है ना, ये एक जो एटीट्यूड है ये इंसान के जहन में शैतान और उसके नफ्स का बहुत बड़ा हमला होता है जो उसको फिर गुमराही की तरफ ले जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला इससे लोगों को गुमराह भी करता है इस तरह के साथ और लोगों को हदायत भी देता है इस एग्जांपल से, इस बात से। और आगे अल्लाह ताला ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो इससे गुमराह होता है वो ये जो फासिक है, जो मतलब जो ओपनली डिसोबीडियंट है, जैसे आपने उसको फासिक को भी आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि लोग जो फिर ओपनली डिसोबीडियंट होते हैं वो भी ऐसी बात करते हैं, और जो मुनाफिक होगा वो तो कोशिश करेगा कि ऐसी बात ही ना की जाए, लोगों के सामने ऐसी बात मैं क्यों करूं अपने ईमान का वो, लेकिन जो एक इल्हाद की तरफ जा चुका है या उस तरह से बंदा वो कहेगा भाई ये क्या बात हो रही है। और ये बीमारी है, ये मसला अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है और ये ऑल द टाइम्स के लिए इंसानों के लिए रहेगा, क्योंकि ये चीजें इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान है, कुरान मजीद में इस तरह की और भी जगहों पर अल्लाह ताला ने ऐसे फरमाया कि इस किताब के जरिए जो है हमने एग्जाम्पल दी जाती है, इसमें लोगों के लिए कुछ गुमराहियां भी हैं और हदायत भी है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो कुरान नाउज बिल्ला सोर्स ऑफ गुमराही है, कुरान तो हदायत की सोर्स है, लेकिन वो फर्क कर देता है, क्योंकि वो जो बंदा एक शुक्र वाले एटीट्यूड से, एक ईमान वाले एटीट्यूड से जा रहा है वो उसको और तरीके से परसीव करेगा, और जो कुफर और इनकार पर डटा हुआ है और जो सिर्फ एक मनफी नुकता नजर से इसको देख रहा है तो वो सिर्फ कीड़े निकालने के लिए जाएगा। तो वो अपने आप को क्या कहना चाहिए, अपने तासुब को साइड पर रखे, इस किताब को पढ़ ही नहीं रहा, तो इसलिए वो इससे गुमराह, उसको उसमें गुमराही के पॉइंट्स मिलेंगे।
ये ना दुनिया में अगर हम देखें उसके लिए तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज सीखने के लिए आपको, जिस बंदे से आप सीख रहे हैं उसके लिए आपको सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ लोअरनेस आपके सामने होनी चाहिए, यानी आप जब ये समझेंगे कि वो ऊपर है और मैं नीचे हूं, तो तब जाके वो पानी जो है ना नीचे आपकी तरफ आएगा। अगर आप उसी के इलम को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, यानी कि उसमें से आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स निकालना शुरू कर देंगे, जाए कि पहले आप उसको जानने की कोशिश करें कि वो पूरा जो कंटेंट है वो क्या कह रहा है असल में। होता है ना जिससे डिस्कशंस भी होता है कि आप बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आप बात शुरू ही करना चाहते हैं, जो पहले आपके जुमले होते हैं उसी पे अगला बंदा अटैक कर देता है। जाए कि वो पूरी बात सुने कि भाई पूरी जो बात ये बंदा कह रहा है उसको मैं पहले सुन लूं, ये जो कहना चाहता है, और फिर मैं जवाब दे दूं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने इसी आयत को मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके से इरशाद फरमाया है। इस तरह फरमाया वलकद यसरनल कुरान अज़्ज़िक्र, कि हमने कुरान को आसान बनाया है जिक्र करने के लिए। तो ये जो आसानी है ये खुदा की जरूरत नहीं है, ये आसानी इंसान की जरूरत है, और ये तमसीलात खुदा की जरूरत नहीं है, ये इंसान की कम इल्मी की जरूरत है असल में, क्योंकि उसके पास महदूद इलम है और महदूद और इंसान में भी दर्जा बदर्जे के इलम वाले लोग होते हैं। तो कुरान हर दर्जे के इलम के लिए ये हिदायत है। तो अल्लाह ताला जो एग्जाम्पल पेश करते हैं वो हर एक के लिए काबिल तकलीद और काबिल फहम होती है असल में। यही कमाल है कलाम इलाही का। अब इंसान के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो समझता है कि जो कलाम जितना दकीक होगा, जितना मुश्किल होगा, जितना फिलोसॉफिकल होगा, मुश्किल मुश्किल अल्फाज, जिस तरह आप देखें रिसर्च पेपर्स जो लिखे जाते हैं और फिलासफी की आप किताब खोलें तो आप बंदे को वो समझ ही नहीं आती है, इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे और जानबूझ के इस्तेमाल किए होते हैं ये दिखाने के लिए कि कितना इलम एक बंदा रखता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, मेरा ऐसा मामला नहीं है कि मैं अपनी खुदाइयत को साबित करने के लिए मुश्किल अल्फाज का सहारा लूं, बल्कि मैं तो रहमान हूं और मेरे रहमानियत का तकाजा ये है कि मैं इंसान के उस लेवल पे, उस डेप्थ पे जाऊंगा, उस गहराई पे जाऊंगा जहां से इंसान बात को समझ सकते हैं। इस तरह बच्चों को अगर आप तालीम देना चाहते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो आपको उनकी जो वोकैबुलरी है या उनका जो माइंड सेट है उसके लेवल पे जाके उनसे बात करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास इलम कम है या आपके पास अल्फाज की कमी है, बल्कि आपके पास उस माहौल की कमी महसूस होना शुरू हो जाती है कि यार अब बच्चे के माहौल में मैं जाऊँगा किस तरह कि बच्चा मेरी बात को असल में समझ ले, वो किस तरीके से सोचता है। तो अल्लाह ताला को तो इसकी कोई कमी नहीं है, वो हर चीज को जानते हैं।
हाँ जी, मेरा ख्याल है कि ये भी जो आपने पॉइंट है इसके भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो जो स्टूडेंट वाला एटीट्यूड होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और अंदाज में भी इस तरह से कह रहा था कि अगर आपको क्रिटिकली भी इवेल्युएट करना चाहे ना, टेक्स्ट को आप कर लें, लेकिन अगर आप तासुब प्रेजुडिस के साथ ना जाए, आप ऐसा इसको समझ लें किसी फेलो किसी इंसान ने लिखा है कलाम, और लेकिन आप किसी तासुब के बगैर जब जाएंगे तो वो फिर आपको चैलेंज करेगा कि अच्छा फिर कोई ना कोई दमशन तो आपकी स्टिल होगी। लेकिन अगर आप इस तासुब के साथ जाते हैं कि मैंने इस किताब को निगेट ही करना है, ठीक है, मैंने अंडरस्टैंड नहीं करना व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, ये आप उस किताब को नीचे समझ रहे, अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं, ठीक है, मैं कहना बराबर भी आके आ जाए फिर भी मसला नहीं है। मसला ये कि जब आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं इसको गलत ही करना है, तो आप एक्चुअली उसको रीड इसलिए नहीं कर रहे कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, आप उसको निगेट करने के लिए रीड कर रहे हैं, तो वो एटीट्यूड ही सारा उसके जो हदायत का सारा फजाइल कर देगा। ये जो प्रॉब्लम है, और हमें अपने सहाबा की तारीख में भी ये चीज़ मिलती है, बहुत ज़्यादा जो साहब थे वो कुरान को सुनते थे और एक क्लियर माइंड सुनते थे कि बात क्या करना चाह रहे हैं। नफरत वो करते थे इस्लाम से, लेकिन जब कुरान मजीद जो वाकयात आप सुने, जिस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने कुरान मजीद सुना, तो जब उन्होंने अपने अपने उन पर गुस्सा निकाल दिया अपनी बहन पे, उनकी मियाँ पे, तो उसके बाद उनका अच्छा मुझे सुनाओ तो है क्या, मतलब वो तासुब नहीं थे, वो कहते हैं सुना मैं गलतियां निकालता हूँ, कीड़े निकालता हूँ, ये क्या बात कर रहे हैं, तो वो एक एटीट्यूड डिफरेंट है। तो ये चीज है जो बड़ी एक फंडामेंटल चैलेंज भी है कुरान मजीद का, कि अगर मेरे पास आप नॉर्मल माइंडसेट से आते हैं तो मैं आपको बदल दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं और वो करने के लिए, फिर भी मैं आपको बदल दूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ निगेशन की आप एक्सेप्ट करने के माइंडसेट में नहीं, आप पहले से इन बना के आ गए कि मैंने इसको कीड़े निकालने, तो फिर ये आपको एक पजल ही लगेगी इसमें क्या बातें हो रही है, और आप उसमें आपको मसले नजर आएंगे। अच्छा, ये तो एक पॉइंट है। और दूसरा एक पॉइंट, वो थोड़ा सा मुश्किल है उसको मेरे लिए भी बयान करना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आपने ये एक ये थ्योरी है कि कुरान मजीद के साथ जो इल्म है ना, वो हर ख्याल आई थिंक मुझे इसी तरह याद नहीं, ये कोल है, हदीस शरीफ है, लोग इसको अक्सर कोट करते हैं कि किसी आलिम में कोल है शायद, कुरान जो है वो एक दरिया, एक समुंदर है, और हर बंदा जो है अपने इल्म के मुताबिक उससे चीजें
जी
वसूल कर सकता है, बेसिकली इस किस्म का ना, इस किस्म का कुछ कोल है। तो ये चीज क्या कहना चाहिए, ऊपर से तो बड़ी खुशनुमा लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं। और मैंने तो यही सीखा है कि ये कुरान मजीद को देखने का सही नजरिया नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो कुरान है ये हर इंसान के लिए भेजा है, तमाम इंसानियत के लिए, और उसमें जो जो नॉलेज बेस है उसमें डेफिनेटली आपको कुछ सीखना पड़ेगा। मसलन आपको इसम ही सीखने पड़ेंगे, ये नेम्स है, नाउन्स है, ये बाउजा है, हमें क्या पता बाउजा क्या होता है, हम जाके किसी आलम से सीखेंगे किसका मतलब ये है। लेकिन वंस आप वो बेसिक अपने जो एजुकेशन हासिल कर लेंगे उनके साथ, तो उसके बाद आप भी उनके साथ उसी लेवल पे जाके इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब आगे इसके आगे एक और चीज आ जाती है कि आप इसको अंदर और उलूम, क्योंकि एक आलिम है उसने और भी उलूम पढ़े हैं, तारीख पढ़ी है उसने, सिख पढ़ी है, और उसने मतलब नरेशन पढ़ी है, उसने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, तो उसको लिटरेचर के सेंस है उसमें और चीजें निकाल सकते हैं। आजकल का जो आलिम है उसने साइंस पढ़ी हुई है, वो कहेगा जी बाबूजा की जो मिसाल आपने ने दी है, देखिए मच्छर है, मच्छर है तो छोटा सा होता है, लेकिन उसका एक मच्छर आपकी रात की नींद खराब कर देगा, और मच्छर का इम्पैक्ट देखें आप, इम्पैक्ट उसका कितना बड़ा है कि मच्छर से मलेरिया फैलता है और कितने कितने लोगों को उसने मारा हुआ है। मतलब मॉस्किटो इज द डेडलीस्ट एनिमल इन द ह्यूमन हिस्ट्री इन सम सेंस, उसने इतने ज्यादा लोगों को बीमारी उसने ट्रांसमिट की हुई है। तो छोटी सी मिसाल नहीं है ये, मिसाल ऊपर देखने में छोटी है, असल में बहुत बड़ी है। अब ये सारे की सारी जो एक्सप्लेनेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनवैलिड है या ये इसी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एक एक्सटर्नल चीज है जो किसी ने अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर उसके साथ अटैच कर दी है, उसको उससे परसीव कर रहा है। लेकिन जो बेसिक बात जो अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं वो इससे इंडिपेंडेंट है, इससे ऊपर है वो, और वो उसके बगैर मीनिंग कन्वे हो रहा है। मेरी बात को शायद समझे यहाँ पे,
हाँ
तो ये
हाँ
थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है कि जो है ना कि इल्म के दर्जे हमेशा होते हैं इंसानों में, वो हमेशा रहेंगे। इसी तरह तकवा के दर्जे भी इंसानों में है, वो भी हमेशा रहेंगे। जिस तरह रंग नस्ल का इंसानों में फर्क है, वो सब फर्क हैं, लेकिन जो ये किताब है उसमें सब इंसान जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के अंदर पीछे खड़े हुए हैं। उसमें कुछ डेफिनेटली जो पहले लोग आ गए वो पहली सफ में हैं, बाकी लोग पिछले सफों में हैं, वो तो एक दर्जाबंदी है। तो लेकिन जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है और जो इसकी ट्रांसमिशन है और जो इसकी रिसेप्शन है वो हिदायत के लिहाज से वो कॉमन है, उसमें ज्यादा कम नहीं हो सकता। अगर उसमें ज्यादा कम हुआ तो उसका मतलब है कि हम कुरान मजीद से कुछ ऐसी चीज समझने से कासिर हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाई, या हम कुरान मजीद से कुछ ऐसी चीज समझने के काबिल हो गए हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नहीं सिखाई। मिसाल के तौर पे आजकल जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन हैं कि कुरान ने मजीद से ब्लैक होल्स निकल रहे होते हैं और ऐसी सारी बातें, तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें इल्म है कि ये चीजें उस जमाने में डिस्कस आउट नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीजें मतलब इस वजह से ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो कुरान को समझने के बाद इल्म की दर्जाबंदी है ना उसके ऊपर मुझे बड़ा एहतियात से बात कहता हूँ, एहतियात से इसको अप्रोच करना चाहिए। डेफिनेटली आप उसको उस तरह से इंटरप्रेट कर लें, आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन वो हिदायत से उस इंटरप्रिटेशन का उस इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स पुट इट इन अदर वर्ड्स, आपने क्या कुछ पढ़ा हुआ है, क्या कुछ इल्म रखा हुआ है, वो इससे कता नजर है कि आप कुरान मजीद के पास जाते हैं और वो आपको क्या इल्म दे रहा है। वो उसका इल्म जो है वो बाकी सब उलूम से मुख्तलिफ है और इन सब से जुदा है, और आप अगर उसका इल्म हासिल करते हैं तो आपको किसी और इल्म की एहतियाज नहीं रहती। काफी लंबी तकरीर होगी मेरी।
नहीं नहीं सही किया आपने, अच्छा आपने इजाफा किया, और मैं भी बिल्कुल इसी चीज का कायल हूँ। शायद आपने पहले भी महसूस किया है, क्योंकि पहले जो आपने वो फेज बताया, ये फेज मेरे ऊपर भी गुजर चुका है, जो इस्लाम और साइंस के पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशंस होती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे भी इस चीज का एहसास हुआ कि जो कुरान है, आप बेशक ये तफसीलात करें इसमें, मैं नहीं समझता कि कोई हरज है अगर आप, लेकिन ये है कि ये अमर नहीं है ये चीज, क्योंकि एक्सटर्नल चीजें चेंज होती हैं, वक्त के साथ, साइंसी तरक्की के साथ, इंसानी फहम की तरक्की के साथ, जो कलाम के अंदर इल्म है उसी की बात की जाए, यानी जो अंदर से चीज़ बाहर आ रही है ना, उस पे आप डिस्कशन करें, ना कि आप बाहर से उलूम अंदर लेके आए। कुरान जो जो बात कर रहा है ना, उसकी उसके अंदर से, कलाम के अंदर से इल्म निकलता है असल में, कि उसकी तरतीब और उसकी जो तमसीलात है ना, वो आपको अट्रैक्ट करती हैं असल में। उसके अंदर एक इल्म मौजूद है, और उसको जितना इंसान पढ़ता है और रिपीट करता है, तो वो एक खास खास माहौल बनाती हैं, और एक खास जो है ना वर्ल्ड व्यू डेवलप करती हैं आपके अंदर, दुनिया को देखने का जो जाविया है ना, वो आपका डेवलप होता है। और मेरे ख्याल में यही कुरान का बुनियादी मकसद है। जो हलाल और हराम और की आयात, वो तो चंद ही हैं कुरान में, वो मेरे ख्याल में अगर इकट्ठी की जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ही बन सकता है, शायद एक दो सफ़े ही बनेंगे वो, अगर हलाल और हराम की बात की जाए। लेकिन जो इंसान की तज़किया का मामला है, यानी कुरान इलम भी तो देता है, लेकिन वो इलम देता है कि जो इंसान की तज़किया के लिए अहम है, कि वो अपनी ज़ात को जाने, अपने खुदा को पहचाने, और इस कायनात को पहचाने, और अपने ज़िंदगी के मकासद की पहचान उसमें आए असल में। ये टारगेट है कुरान का, और ये हदायत की तफसीलात भी असल में जो मैंने समझी है वो यही है। इंसान इस ज़िंदगी में जो उसने रहना है चंद साल, उसके मामले में वो चीज़ जान जाए कि जिससे वो कामयाब हो सके आखरत में, ये मकसद है कुरान का। बाकी जो जितनी फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं या साइंसी डिस्कशंस हैं, वो इंसान की जहन की ज़रूरत तो हैं, लेकिन वो ईमान की ज़रूरत नहीं है।